यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 8 जनवरी 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद कांग्रेस के मुख्यालय कैपिटल बिल्डिंग पर उपद्रवियों के हमलों पर हैरानी, दुख व निंदा। कोविड-19 महामारी की वैक्सीनें उपलब्ध होने के साथ साथ उभर रहे वैक्सीन राष्ट्रवाद पर चिंता, वैक्सीनें सभी को उपलब्ध कराए जाने की पुकार। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान, विश्व बैंक ने किया निर्णायक ढंग से कार्रवाई का आह्वान। और खाड़ी क्षेत्र में एकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए गए घोषणा पत्र का स्वागत। याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा धावा बोले जाने और हिंसक घटनाओं पर दुख व्यक्त किया है। अमेरिकी कांग्रेस के सत्र के दौरान हुए इस उपद्रव के कारण नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव नतीजों की पुष्टि के लिए की जा रही कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना पड़ा। अमेरिकी लोकतंत्र के केंद्र वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल इमारत में अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन सेनेट और निचला सदन प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल इमारत में हुए घटनाक्रम पर यूएन प्रमुख आहत हैं। इन परिस्थितियों में ये अहम है कि राजनीतिक नेता अपने समर्थकों को हिंसा से परहेज करने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून के राज का आदर करने के लिए मजबूती से मनाए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कैपिटल इमारत में उपद्रवियों की भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा,
We are deeply troubled by Wednesday's attack on the US Capitol, which demonstrated clearly the destructive impact of sustained, deliberate distortion of facts and incitement to violence and hatred by political leaders.
हम बुधवार को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले पर बहुत व्यथित हैं। ये हमला तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लगातार प्रयासों के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। इस हमले में राजनीतिक नेताओं द्वारा हिंसा और नफरत को भड़काने के नतीजे भी नजर आते हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति सहित तमाम राजनीतिक मंचों के नेताओं का आह्वान करते हैं कि वो झूठे और खतरनाक बयानों का खंडन करें और अपने समर्थकों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करें। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोस्किन ने भी कैपिटल हिल में हुई घटनाओं पर दुख और निराशा जाहिर की है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में ध्यान दिलाया कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। उन्होंने साथ ही ये विश्वास भी व्यक्त किया कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे मेजबान देश अमेरिका में शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए आदर की विजय होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने चिंता जताई है कि उभरता वैक्सीन राष्ट्रवाद दुनिया को चोट पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर पूर्ण रूप से काबू पाने के लिए ये जरूरी है कि असरदार व सुरक्षित टीकों का न्यायसंगत वितरण हो। यूएन एजेंसी प्रमुख ने आग्रह किया है कि जिन देशों के पास आवश्यकता से अधिक वैक्सीन की खुराकें हैं, उन्हें इन खुराकों को दान कर देना चाहिए। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेसस ने शुक्रवार को बताया कि पिछले साल अप्रैल में वैक्सीन अलायंस गैवी के साथ मिलकर कोवैक्स पहल को शुरू किया गया था। इस पहल के तहत सुरक्षित और असरदार वैक्सीन का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जाना था। अब तक 2 अरब खुराकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन उन्होंने चिंता जताई है कि जहां धनी देशों में टीकाकरण आगे बढ़ रहा है, वहीं निम्न और अधिकांश मध्य आय वाले देशों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जो कि एक बड़ी समस्या है जिसे सुलझाया जाना होगा। बताया गया है कि शुरुआत में ही धनी देशों ने अनेक प्रकार के टीकों की अधिकांश आपूर्ति अपने लिए सुनिश्चित कर ली। इसके अलावा उच्च और मध्य आय वाले देश कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी कर रहे हैं, वो देश भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैक्सीन अलायंस गेवी की कोवैक्स मुहिम का हिस्सा हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्धनतम और सबसे वंचित देशों में ज्यादा जोखिम झेल रहे लोगों को वैक्सीन फिलहाल नहीं मिल पाएगी।
वैक्सीन नेशनलिज्म हर्ट्स अस ऑल and is self-defeating. But on the flip side, vaccinating equitably saves lives.
महानिदेशक गेब्रेसिस चिंता जता रहे थे कि उभरता वैक्सीन राष्ट्रवाद दुनिया को चोट पहुंचा रहा है और असल में खुद के लिए नुकसान का सबब है। लेकिन अगर न्यायसंगत ढंग से टीकाकरण होता है तो जिंदगियों को बचाने और स्वास्थ्य प्रणालियों में स्थायित्व लाने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक आर्थिक पुनर्बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के अवसरों के सृजन में भी तेजी आएगी। जिन देशों ने जरूरत से ज्यादा टीकों को हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनसे गैर जरूरी टीकों को कोवैक्स पहल में दान करने और द्विपक्षीय समझौते को रोकने की अपील भी की गई है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी देश असाधारण नहीं है, इसलिए कतार को तोड़कर अपनी आबादी में टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे समय में जब अन्य देशों के पास वैक्सीन की आपूर्ति ना हो।
विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपना सतर्कतापूर्ण अनुमान जारी करते हुए आर्थिक वृद्धि की दर 4% रहने की संभावना जताई है। विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि महामारी के प्रभावों से अर्थव्यवस्था के उभरने की प्रक्रिया में नरमी बनी रहेगी। जनवरी 2021 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट में आगाह किया है कि नीति निर्धारकों को निर्णायक ढंग से कार्रवाई करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था 4.3% तक सिकुड़ी, जिसके बाद अब ये फिर बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं, लाखों करोड़ों लोग गरीबी के गर्त में धंस गए हैं और आर्थिक गतिविधियों पर आने वाले दिनों में भी असर जारी रह सकता है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों के मुताबिक तात्कालिक नीतिगत प्राथमिकताओं के तहत कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने और तेजी से वैक्सीन को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जाना होगा। वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में महामारी के कारण आया ठहराव पहले जताए गए अनुमानों से थोड़ा कम गंभीर है। इसकी वजह अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का आशंका से कम सिकुड़ना और चीन में स्फूर्तिवान पुनर्बहाली को बताया गया है। लेकिन अधिकांश उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों पर वैश्विक महामारी का खासा ज्यादा असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR ने चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए उन्हें तत्काल रिहा किए जाने की मांग की है। यूएन कार्यालय ने स्थानीय प्रशासन से लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की गारंटी देने का आग्रह किया है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
पुलिस का कहना है कि बुधवार को 53 राजनीतिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पूर्व सांसदों, मौजूदा जिला पार्षदों और वकीलों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता लिज थ्रोसेल ने गुरुवार को कहा कि ताज़ा गिरफ्तारियां हांगकांग में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और बुनियादी स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ सिलसिलेवार कार्रवाई का हिस्सा हैं। लिज थ्रोसेल ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक मुद्दों पर प्रत्यक्ष व स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सेदारी का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहमति के अंतर्गत यह अधिकार संरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से ICCPR के तहत तय दायित्वों को मजबूती से निभाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने व मिलने जुलने के अधिकार का दमन करने से बचने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और UN के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अनेक मरतबा चेतावनी जारी की है कि जून 2020 में पारित किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कानून के उल्लंघन को स्पष्टता से बयान नहीं किया गया है। इससे कानून का मनमाने व गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता ने स्थानीय प्रशासन से मौजूदा जांच प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की गारंटी देने का आग्रह किया है। इसके तहत पत्रकारों और मीडिया संगठनों को पूर्ण रूप से और आज़ादी के साथ कामकाज जारी रखने की अनुमति दी जानी होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद की शिखर वार्ता के दौरान क्षेत्रीय एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणा का स्वागत किया है। अल उला घोषणा के जरिए खाड़ी क्षेत्र में शांति व समृद्धि को मजबूती प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
अल उला घोषणा सऊदी अरब के उस शहर के नाम पर आधारित है जहां खाड़ी सहयोग परिषद की 41वीं शिखर बैठक आयोजित की गई है। ताज़ा घोषणा में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में पारस्परिक एकता की अहमियत पर बल दिया गया है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है। महासचिव गुटेरेश ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और कतर के बीच वायु क्षेत्र, भूमि और जल मार्ग खोलने की घोषणा का भी स्वागत किया है। अपने बयान में महासचिव गुटेरेश ने ओमान के स्वर्गीय सुल्तान और कुवैत के स्वर्गीय अमीर सहित क्षेत्र के उन अहम नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने खाड़ी क्षेत्र में उभरी दरार को पाटने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यूएन प्रमुख ने भरोसा जताया है कि सभी संबंधित पक्ष सकारात्मक भावना के साथ अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। क्षेत्र में राजनीतिक हालात वर्ष 2017 में उस समय खराब हो गए थे जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को खत्म कर दिया था। कतर पर कथित तौर पर ऐसे गुटों को समर्थन देने का आरोप लगाया गया था जिन्हें ये देश आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं। कतर से कुछ मांगों की सूची देते हुए उन्हें पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इन सभी आरोपों को नकार दिया था।
दुनिया भर में लोगों ने वैश्विक चुनौतियों का असरदार ढंग से मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद में अपना भरोसा व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर साल भर तक चले सर्वेक्षणों और संवादों में ये बात प्रमुखता से सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने जनवरी 2020 में यूएन 75 पहल शुरू की थी जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आशाओं व आशंकाओं को समझना था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में उनकी आकांक्षाओं व विचारों को सुना जाना था। सर्वेक्षणों और संवादों के जरिए 195 देशों से 15 लाख लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने नतीजों का उल्लेख करते हुए बताया कि यूएन 75 वैश्विक चर्चा दर्शाती है कि 97% प्रतिभागियों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया है। ये बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के मिशन के लिए एक बेहद मजबूत संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करना हम पर यानी सदस्य देशों और यूएन सचिवालय पर निर्भर है जिनके लिए हम सेवारत हैं। यूएन 75 संवादों और सर्वेक्षणों के साथ साथ विश्व आबादी की राय जानने के लिए नवाचारी तरीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारंपरिक व सोशल मीडिया सहित अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वास्तविकता को जानने के लिए 2 स्वतंत्र सर्वेक्षण भी कराए गए। सर्वेक्षण बताते हैं कि विभिन्न पीढ़ियों, क्षेत्रों, आय समूहों, शिक्षा स्तरों में भविष्य के प्रति आशंकाओं व आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में उम्मीदों में एकता दिखाई। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस पर नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करने वाली वैश्विक स्पर्शनीय संचार प्रणाली की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
नेत्र विकलांगता वाले व्यक्तियों को गरीबी, अनदेखी और हिंसा के बढ़े स्तरों का अनुभव करने की ज्यादा आशंका है। कोरोना वायरस महामारी और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले तालाबंदी जैसे प्रभावों ने नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों की चुनौतियों को बदतर बना दिया है जिससे वो और ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 अरब से ज्यादा लोगों को नजर की कमजोरियों और विकलांगता की स्थिति के साथ जीना पड़ रहा है। महामारी ने आवश्यक जानकारी व सूचनाएं सुलभ साधनों में उपलब्ध करने की महत्ता को भी उजागर किया है। इनमें ब्रेल लिपि और सुनने वाले संसाधन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने समावेशी जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर अनेक गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मलावी में COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में 4,000 से ज्यादा ब्रेल लिपि सामग्रियां उपलब्ध कराई। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को COVID-19 का मुकाबला करने संबंधी दिशा निर्देश अनेक भाषाओं और सुलभ रूपों में उपलब्ध कराए, जिनमें ब्रेल लिपि भी शामिल थी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में इस दिवस की स्थापना की थी। ब्रेल लिपि को उन लोगों के लिए शिक्षा, राय और विचार अभिव्यक्ति, जानकारी हासिल करने और सामाजिक समावेशिता के लिए अति आवश्यक करार दिया गया है जो लोग इसका प्रयोग करते हैं।
तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।